हरे कृष्णा, जितने भी घर से अंग यहाँ रखा है सब बाहर रखे, क्योंकि अंदर काफ़ी जगह नहीं है सबका बैठने के लिए। कुछ ब्रह्मचारी यहाँ ऊपर मंच पर आ जाओ, और कुर्सी बाहर रख दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर भी सावधानी से चलो, इस तरफ और अभी देवियों जो बाहर खड़े रहे कुछ अंदर आ जाए, अभी कुछ जाएगा निकला। कष्ट के लिए क्षमा करिए। बंगाली में एक कहावत है, कष्ट न करले कष्ट मिले बिना, अर्थात बिना कष्ट कृष्ण को मिलना संभव नहीं है। हम जानबूझ करके आपको कष्ट नहीं देते हैं, लेकिन दुनिया वैसी है। और एक निवेदन है, प्रवचन के दौरान में आपका फोन साइलेंट मोड पर रखे और फोटो वीडियो नहीं खींचे, ये सब यूट्यूब पर उपलब्ध होगा बाद में। और केवल यही मेरा निवेदन है, मुझे आपका कान दे दे, ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब महात्मा हैं, मैं क्यों ऐसा कहता हूँ? कहता हूँ क्योंकि गीता में भगवान कृष्णा कहते हैं, बहुनाम जन्म नामान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। भगवान कृष्णा कहते हैं कि बहुत ऐसे है, कुछ लोग ज्ञानी हैं जो वेद शास्त्र वेद वेदांत अध्ययन करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। उनके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामान्ते, ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञान मार्ग पर चलने के बहुत जन्मों के पश्चात समझ सकते हैं कि वो आध्यात्मिक साक्षात्कार क्या है। चैतन्य महाप्रभु का वचन में जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, भगवान के अनेक रूप है, मत्स्य कर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम रामचंद्र बलराम बुद्ध कल्कि दश अवतार है, और उनके अलावा और बहुत 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 अवतार है, परंतु अवतारी कृष्ण ही है, वासुदेव। ये वासुदेव शब्द के दो मुख्य अर्थ है, एक है जो सर्वव्यापी है, सर्वत्र विद्यमान है, और विशेषकर जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ज्ञान मार्ग चलने से प्रयास करते हैं परम सत्य का निर्विशेष अभिव्यक्ति समझना, उनका हाँ वो ये है उनका उनकी धारणा है वैसे कि परम सत्य निर्विशेष, परम सत्य का कोई रूप नहीं है, नाम नहीं है, गुण नहीं है और व्यक्तित्व नहीं है। भगवान कृष्ण सर्वव्यापी है, उस प्रकार जैसे निर्विशेष ब्रह्मा सर्वव्यापी है, परंतु वासुदेव नाम का एक और मुख्य अर्थ है कि वासुदेव के पुत्र जो करीब 5000 वर्षों के पहले ये पवित्र भारत भूमि में अवतीर्ण हुए, वासुदेव का पुत्र के रूप में कृष्ण भगवान मथुरा में उनका जन्म हुआ। अर्थात ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है यही समझना कि भगवान कृष्ण परम सत्य ही है। समाहात्म सुदुर्लभ, भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोग जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं और बहुत तपस्या करने के पश्चात, बहुत ध्यान करने के पश्चात, बहुत अनुसंधान करने के पश्चात, बहुत वैदिक विधि अच्छी तरह सख्त रूप से पालन करने के पश्चात, ऐसे ज्ञानी में एक है दुर्लभ, एक दुर्लभ ज्ञानी समझ सकते हैं कि वासुदेव कृष्ण भगवान सब कुछ ही है, वे परम सत्य का अंतिम शब्द है और इसलिए भगवान कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप सब महात्मा हैं। इसका मतलब क्या है? आप सब पूर्व जन्मों में बहुत तपश्चर्या किया, मुझे मालूम नहीं, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन यदि कोई भी ज्ञान मार्ग से भगवान श्री कृष्ण के चरण में आता है या वैष्णवों की कृपा से आते हैं, दोनों का फल एक ही होते हैं। अर्थात अभी कहता हूँ आप सब महात्मा है, कैसे महात्मा है? आप सब गृही है, संसारी है, आम लोग है पंजाब में, आम आदमी पार्टी चलते, लेकिन उस तरफ हमारे कोई आदान प्रदान नहीं है, पॉलिटिक्स में हम इन्वॉल्व नहीं है। मतलब साधारण या आम दृष्टिकोण से आप सब आम लोग है, आप सबका घर है, बच्चे हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे के माता पिता हैं, और ऐसे आप स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं और अभी कुछ काम करते हैं, कोई कोई व्यापार करते हैं, कोई कोई टीचर होते हैं, कोई कोई नौकरी करते हैं, तो कैसे आप महात्मा हैं? सामान्यतः महात्मा हम ऐसे समझ, यही यही कपड़े पहनने वाले महात्मा है, ऐसे हम समझते। और पंजाब में कुछ महात्मा है जो उसी के जो नील कपड़े पहनते, वो संप्रदाय का क्या नाम है सिख धर्म में, सब एक सच बोलते हैं, खलसा खलसा ऐसे कहते हैं, उनको भी महात्मा बोलते हैं ऐसा। महात्मा शब्द का वास्तविक अर्थ है वो व्यक्ति जो पूर्णतया आत्मसमर्पण किया भगवान कृष्ण के चरण में, जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजंत्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक महात्मा वो है जो मेरी आध्यात्मिक प्रकृति में आश्रय लिया। हम जो भौतिक संसार में हैं, हम भौतिक प्रकृति के बीच में हैं, और कृष्ण की अंतरंग शक्ति अप्राकृत भौतिक प्रकृति से परे है। भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति भक्ति शक्ति, जो व्यक्ति वो शक्ति अंतरंग शक्ति जिनका मूर्ति है श्रीमती राधा रानी या लक्ष्मी देवी, जो कृष्ण की शक्ति में आश्रय लेते हैं और भजंत्यनन्य मनसो पूरा चित लगाकर कृष्ण का भजन करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि कृष्ण भगवान ही है। भगवान कृष्ण कोई भौतिक पदार्थों से, भगवान कृष्ण का रूप भौतिक पदार्थों से गठित नहीं है। यही विषय के बारे में एक नई पुस्तक प्रकाशित है रामानंद राय प्रभु के द्वारा कृष्ण तत्व के बारे में। तो जो ऐसे करते हैं महात्मा होते हैं, और उनके और भी लक्षण अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन्तो मां यथंतश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ऐसे महात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं सदैव मेरा कीर्तन कहते हैं, हरे कृष्ण कहते हैं, या भगवान कृष्ण का गुणगान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो मां यथंतश्च दृढ़व्रताः। और दृढ़ व्रत दृढ़ संकल्प से कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण को नमस्कार अर्पण करते हैं, नमस्यन्त मेरे भक्त होते हैं, और इस प्रकार नित्य युक्त इस प्रकार सदैव मेरी उपासना करने में नियुक्त रहते हैं। और गीता का अंत में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्करो मा मे वैश्यसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हे अर्जुन, तुम सदैव मुझको चिंतन करो, मुझको नमस्कार करो, मेरे भक्त बन जाओ और मेरी पूजा करो। यदि तुम वैसे करोगे मेरी प्रतिश्रुति है, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आयोगे। भगवान कृष्ण नहीं कहते हैं कि गृहस्थ भक्त महात्मा नहीं हो सकते। अर्जुन क्या त्यागी थे, गृहस्थ, और अर्जुन की कितने चार पत्नी थी। अर्जुन गृहस्थ थे, धार्मिक गृहस्थ, और विशेष का वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। और अर्जुन का चरित्र से हम समझ सकते हैं तो किस प्रकार गृहस्थ आश्रम में आप महात्मा हो सकते हैं, आप शुद्ध कृष्ण भक्त हो सकते हैं। आधुनिक जमाने में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर आदर्श गृहस्थ शुद्ध भक्त है, और हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने भी बहुत समय गृहस्थ आश्रम में थे और उसके बाद त्याग किया, संन्यास ग्रहण किया। परंतु गृहस्थ जीवन में पूरा प्रयास किया कृष्ण भक्ति में और विशेषकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में, इसलिए उनका गृहस्थ जीवन में भी वे गृहस्थ महात्मा थे। भगवान कृष्ण कहते हैं महात्मा कौन है जो नित्य युक्त उपास थे, जो सदैव मेरा भजन कीर्तन करते हैं, मेरी सेवा में नियुक्त होते हैं। तो क्या करना चाहिए? गृहस्थ जीवन में भक्ति करने के अलावा बहुत सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, काम करना है पैसा कमाने के लिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि काम करने के बिना जीवन चलाना संभव नहीं है। नहीं कर्म कश्च, सब लोग कर्म करते हैं और कुछ काम करना चाहिए, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो कैसे आप महात्मा हो सकते हैं? क्योंकि आपको काम करना है, बच्चे को स्कूल भेजना है और मतान तो बच्चे का लालन पालन करते हैं और सामाजिक कर्तव्य भी है बहुत। तो कैसे आप पूरी तरह कृष्ण भक्ति कर सकते हैं गृहस्थ जीवन में? तो एक उपाय है जो श्रील प्रभुपाद अनुमोदन किया, श्रील प्रभुपाद की दृढ़ इच्छा थी, वैष्णव समुदाय कृषि गौरक्षा समुदाय बनाना। और उस प्रकार अभी छोटा सा चलते हैं, नंदग्राम गुजरात में, भक्ति ग्राम मध्य प्रदेश में, कुर्मा ग्राम आंध्र प्रदेश में। श्रील प्रभुपाद की इच्छा और आदेश के अनुसार कुछ गृहस्थ भक्त सिटी लाइफ छोड़ के, शहर एक जीवन छोड़ के ग्रामीण जीवन ग्रहण किया, और विशेषकर उस प्रकार ग्राम जिसमें सब निवासी भक्त है। माता जी आप जरा सा सुनिए, शूटिंग ना करिए। और वैसे वे सब ब्रह्म मुहूर्त में देर से देर 4 बजे सवेरे उठते हैं। आप जो गृहस्थ है, आप जो काम करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, ऐसे आप सबों के लिए कितना संभव है प्रतिदिन 4 बजे के पहले उठना? कोई है? बहुत कम। या हाँ, आप निवृत्त है, जो निवृत्त है तो उनके लिए संभव है। और जो संसारिक कर्तव्य में प्रवृत्त है उनके लिए बहुत कठिन होता है। तो प्रतिदिन मंगल आरती जाते हैं और प्रतिदिन 3 बार दिन में सत्संग होते हैं, सवेरे दोपहर शाम को और दिन का समय अलग अलग काम करते हैं, कोई कृषि का काम करते हैं, कोई है टीचर बच्चे को शिक्षण देते हैं और गृहिणी तो गृह कार्य करते हैं और इस प्रकार वे बहुत सुखी है कृष्ण भक्ति करने से। और बहुत भक्त मुझसे पूछते हैं कि हम कैसे कृष्ण भावना पूरी तरह अनुशीलन कर सकते यदि हम वैसे ग्रामीण भक्त समुदाय में शामिल नहीं होंगे, हमारे लिए क्या संभावना है पूरी तरह कृष्ण भक्ति करना सिटी लाइफ में, शहरक जीवन में। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव कैवलम कलो नाश्चैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में परम गति कृष्ण के चरण प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है हरि नाम, कोई दूसरा उपाय कलयुग में पर्याप्त बलवान नहीं है या हमारी कमजोरी है कि हम कठोर तपस्या नहीं कर सकते हैं, हम इतने बड़े धनी नहीं है कि हम विपुल दान दे सकते हैं। कलयुग में यज्ञ अच्छी तरह बनाना, होम यज्ञ अग्निहोत्र यज्ञ बनाना प्राय असंभव है। तीर्थ जाना रेलवे का प्रबंध से तीर्थ जाना आसान हो गया, परंतु हम देखते हैं कि बहुत तीर्थ स्थान में वातावरण अपवित्र होते हैं। हमें आशा करते हैं कि तीर्थ स्थान में पूरी परिस्थिति पवित्र होगी, लेकिन हम वैसे ही देखते हैं कि बहुत तीर्थ स्थान में पूरा वातावरण कमर्शियल है ऐसे, और तीर्थ स्थान में भी बहुत व्यसन चलते हैं। कलयुग में हरि नाम ही उपाय है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव कैवलम। आपका प्रश्न हो सकता है कि हाँ ठीक है, हम स्वीकार करते हैं कि हरि नाम ही उपाय है, परंतु मेरे पास समय नहीं है, पूरा समय नहीं है हरि नाम करने के लिए, शहर एक जीवन में बहुत तनाव होते हैं, राजपुरा में भी छोटा शहर होते हुए भी दिल्ली में वो वातावरण और खाली प्रदूषण से कठिन नहीं है, वो पूरा क्या बोलते हैं मानसिक सबका वातावरण प्रेशर बहुत होते हैं, चाप होते हैं, ऐसे काम करो काम करो काम करो ऐसे चलो वहाँ चलो वो काम करो फैशन पहन दो। कलयुग का प्रभाव वहाँ राजपुर से अधिक होते, लेकिन राजपुर में भी राजपुर छोटे छोटे शहर में बताला उसमें भी कलयुग का प्रभाव काफी पहुँच गए हैं। तो क्या करना क्या करना, शास्त्र में बताए गए हैं कि श्री भक्ति मार्गे कंटक कोटि रुद्ध खलो। कलयुग में भक्ति मार्ग में बहुत क्या बोलते हैं काटा स्टोन क्या बोलते हैं हिंदी में काटा कटलाई नहीं नहीं ऐसे ही कटलाई स्टोन जो काटा काटा बहुत काटा होता है श्री भक्ति मार्ग में इसलिए वो कंसेशन है हरिनाम करना भगवान चैतन्य महाप्रभु जानते हैं भगवान कृष्ण जानते हैं कि काली युग में संसार चलाने के लिए सबके लिए बहुत कष्ट होते हैं आपके लिए और अंबानी अदानी ऐसे लोग के लिए भी आप क्या सोचते हैं ऐसे बड़े बड़े आदमी अंबानी अदानी उनको तनाव नहीं होते होते हैं शायद हम लोगों से और भी ज्यादा होते तो वैसी परिस्थिति है कलयुग में इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने यही उपाय दिया सबके लिए हरे नाम हरे नाम एव केवलम भगवान चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि कलयुग कष्ट का युग है भौतिक संसार की परिस्थिति क्या है दुखालयम अशाश्वतम दुखमय है और सब कुछ भौतिक संसार में अशाश्वत है कुछ नहीं रहते परंतु कलयुग में वातावरण विशेषकर खराब होता है इसलिए चैतन्य महाप्रभु शास्त्र के अनुसार बताते हैं हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव गतिर अन्यथा वो कंसेशन है यदि आप पूर्णतया वैदिक विधि पालन नहीं कर सकते हैं यदि आप दिन में सिर्फ थोड़ा समय निकाल सकते भजन करने के लिए तो हरिनाम करो और यदि पूरी श्रद्धा होती है नाम में तो वो नाम जप भगवान कृष्ण सुनेंगे भगवान कृष्ण सब कुछ सुनते हैं परंतु विशेष आग्रही होते हैं जब उनके भक्त असहाय भाव से उनका नाम बोलते कृष्ण को पुकारते हैं जैसे द्रौपदी आप सब जानते हैं दुशासन द्रौपदी का कपड़ा लेने चाहते थे प्रयास किया और द्रौपदी क्या है क्या, कुछ नहीं कर सकते और उनके पांच पति द्रौपदी के समक्ष है और वे भी धर्म से युधिष्ठिर का वचन से असहाय थे अंत में द्रौपदी क्या किया क्या किया गोविंदा गोविंदा फिर गोविंदा कपड़े के रूप में अपर्याप्त कपड़े के रूप में अभिव्यक्त हुआ और दुशासन का कू प्रयास निष्फल हुआ तो उसी प्रकार हमें नाम कृष्ण का नाम जप करना चाहिए रूटीन जैसे नहीं है दिल से यदि हम इतना सा क्वांटिटी भजन नहीं कर सकते तो जितने भी समय हम मिलते उसमें हमें पूरा क्वालिटी का भजन करना चाहिए क्वालिटी का मतलब दिल से प्रार्थना करना हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते दीनबंधु कृष्ण का एक नाम है दीनबंधु तो ऐसे ही सोचना चाहिए मैं दीन हूँ, यही भक्ति भाव है। यदि हम सोचते मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ तो हम भक्ति से बहुत दूर रहेंगे, परंतु यदि हम दीन भाव से अति विनम्र भाव से कृष्ण को पुकारते हैं तो कृष्ण जरूर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर का विचार है कि शरंग शरणागति होइबे जहा ता प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। नंद कुमार श्री कृष्ण किस प्रकार का भक्त की प्रार्थना सुनते हैं? सभी भक्त का प्रार्थना सुनते हैं। आर्थो जिज्ञासो आर्थार्थी ज्ञानी छह प्रकार का भक्त है। भक्त या भक्त प्राय है, पूरा भक्त नहीं है। छह प्रकार के भक्त कृष्ण से कुछ मांगते हैं, जो पैसा चाहते हैं, जो बहुत कठिनाई में है, जो जिज्ञासु है और जो जानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो चार प्रकार के भक्त भक्ति मार्ग पर प्रवेश करते हैं, परंतु विशेषकर और सब उसी प्रकार के भक्त कृष्ण भगवान सुनते हैं। वो सब सभी प्रकार के भक्त कृष्ण भगवान की प्रार्थना सुनते हैं, परंतु विशेषकर शरंग शरणागति होइ बे जहा तहा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। अर्थात ये प्रेम भाव नहीं है, कुछ दर्द है, कष्टमय शरीर है। शरंग शरणागति वो क्या है? शरणाग शुद्ध भक्त का मतलब क्या है? महात्मा कैसे हम महात्मा को पहचान कर सकते हैं? तो सामान्य लक्षण है कि वे कृष्ण का भक्त है, शुद्ध भक्त है। और विशेषकर शुद्ध भक्त का क्या मतलब है? जो शरणागत होते हैं। शरणागति पूरी तरह ग्रहण करते हैं। तो शरणागति क्या है? अनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोत्रत्वे वर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। शरणागति भक्ति भाव ही है। भक्ति भाव का दूसरा नाम है शरणागति, क्योंकि भक्ति क्या है? मामेकं शरणं व्रज, कृष्ण के चरण में एक निष्ठ शरण लेना। तो कैसे शरण लेना है? इस प्रकार अनुकूल्यस्य संकल्प, संकल्प करना है जो कुछ अनुकूल है कृष्ण भक्ति करने के लिए मैं करूँगा। प्रतिकूल यस्य वर्जनम, और सब कुछ जो प्रतिकूल होते हैं उसको मैं वर्जन करता हूँ। रक्षिष्यति विश्वास हो, पूरा विश्वास होता है कि भगवान कृष्ण मुझको रक्षा करेंगे। यही विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार में बहुत अंतराय होते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत कांटा होते हैं, लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान मुझको रक्षा करेंगे और गोपतृत वै वारण था और भगवान मुझको पालन करते हैं। आत्मनिक्षेप तो पूरा प्राण से आत्मसमर्पण करना और कार्पण्य दायन्य भाव से। तो इस प्रकार यदि हम शरणागत होते हैं, गृहस्थ जीवन में बहुत कठिनाई के बीच में भी जो भी परिस्थिति में हम होते हैं, यदि हम वो शरणागति भाव हृदय में पोषण करते हैं, हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। दो विचार है, एक है क्वांटिटी और दूसरा है क्वालिटी। क्वालिटी होने चाहिए, जितने भी संभव हो आप कीर्तन भजन करिए। ऐसा नहीं है कि खाली दिल में मैं महसूस करता हूँ कि मैं भक्ति करते हैं, वो ऐसे नहीं। व्यवहारिक रूप में भक्ति करनी चाहिए, तो जितने भी संभव हो। इसलिए सामान्य सांसारिक जीवन से जो सामान्य लोग व्यतीत करते हैं, जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं तब बहुत कुछ घटना है। सिनेमा जाना और फालतू सामाजिक पार्टी इत्यादि जाना, बहुत कुछ घटना है जिससे हम साधु संग कर सकते हैं, जिससे हम असत संग से मुक्त हो सकते हैं। तो आप इस प्रकार प्रयास करिए जीवन व्यतीत करना। और यदि हम सचमुच दिल से भगवान को प्रार्थना करते हैं, अवश्य ही भगवान कृष्ण हमको उद्धार करेंगे। एक और संभावना है, सुझाव है कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, जैसे अच्युत गोविंद प्रभु अर्ली रिटायरमेंट लिया और शिक्षक टीचर थे और निवृत्त होने के पश्चात फुल टाइम पूरा प्रवृत्त होते हैं कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति प्रचार करने में। तो वो भी एक संभावना है। यदि आपके बच्चे बड़ा हो गया, सेटल्ड हो गया, तो और भी ज़्यादा काम करना का ज़रूरत नहीं है। तो सब कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े बच्चे को दे दे और सांसारिक कर्तव्य से निवृत्त हो जाए और पूरी तरह भक्ति में प्रवृत्त हो जाए। तो सब लोग अलग है, सब एक व्यक्ति की परिस्थिति दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति जैसे एकदम बराबर समान नहीं होता है। सब की व्यक्तिगत परिस्थिति है। तो अभी मैं सामान्य सलाह देना चाहता हूँ, किस प्रकार आपका जीवन, आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं जिससे आप अंतिम समय भगवान कृष्ण का याद कर सकते हैं, और उसके पहले जिससे आप चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद का प्रचार अभियान में, श्रील प्रभुपाद का मिशन में बहुत कुछ कर सकते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पब्लिक हरिनाम करना है, महोत्सव बनाना है, पड़ोसियों को प्रचार करना है, तो सब गृहस्थ भी प्रचारक हो सकते हैं। तो आप जरा सा सोचिए किस प्रकार आपका मूल्यवान मानव जन्म आप उसको अच्छी तरह व्यवहार कर सकते हैं। अभी आप सब महात्मा हैं, आप सब कृष्ण भक्ति ग्रहण किया गंभीरत्व से, इसलिए आप आज क्या दिन है, मंगलवार, मंगलवार का वर्किंग डे पर दूर से आए, इसलिए मैं आभार हूँ। तो ये संदेश बोलना चाहता हूँ, तो सोचिए किस प्रकार आपका मूल्यवान मानव जीवन आप जितने भी संभव हो कृष्ण की भक्ति में लगा सकते हैं। वो मेरा संदेश है और निवेदन है। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो जरा से पूछे। माइक।
हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है
या प्रयाति समर्थभावम् याति नश्चक्षुः,
अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे पास आ जाएगा। और शिला प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है, भगवान को प्राप्त करना है। और हम ये भी हम आरती में गाते हैं कि चक्षु दान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, कि जन जन्मांतर तक हम आपकी सेवा करते रहें। और चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं कि ममा जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि, कि मैं जन जन्मांतर तक आपकी सेवा करता रहूं। तो हमें भगवान कृष्ण से प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, कि एक प्रकार एक तरफ श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हम
सर्वप्रथम हमें समझना चाहिए कि भौतिक संसार दुखमय है और हमें भक्ति साधना करनी चाहिए, संसार से मुक्त होना चाहिए। और भी प्रगत, यदि हम और भी प्रगत होते भक्ति में, हम केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे किस प्रकार दूसरे की मुक्ति भी हो सकते हैं, वो एक विचार है। इसलिए हमें तैयार होना चाहिए बार बार जन्म लेना। और एक विचार है कि जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं निज गुण कर्म दोषे जय जय जन्म पाए जन्मे जन्मे जैन थवा नाम गुण गाय। भक्तों सोचते कि मैं अयोग्य हूँ भगवान का धाम जाने के लिए, तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी जन्म लूंगा निज कर्म गुण और दोष से, जो भी जन्म लूंगा यही मेरी प्रार्थना है कि उसी जन्म में मैं अवसर प्राप्त करूंगा तुम्हारा कृष्ण का गुण गान करना। अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं भक्तों का भक्ति में प्रगति का स्तर के अनुसार। कोई दूसरा प्रश्न है? हरे कृष्ण। तो हम ये सत्संग अभी समापन करेंगे और प्रसाद वितरण होगा। जय 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 हरे कृष्ण।